नमस्कार भारत, 8 सितंबर दिन शनिवार, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। पाकिस्तान द्वारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोले जाने की संभावनाओं का भाजपा ने किया स्वागत, लेकिन साथ ही जताया शक।
जहाँ तक करतार सिंह गुरुद्वारे का जो रास्ता खोला है उसका हम स्वागत करते हैं। इस तरह के बयान देते हैं तो इससे पता चलता है कि वह इस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं।
आज से नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक, वोट बैंक बचाने की होगी चुनौती।
जो लोग भाजपा की सपोर्ट करते आए हैं दशकों से, अब वो अगर बिदक गए तो उसका फायदा कांग्रेस को जा सकता है।
जम्मू कश्मीर के DGP पद से क्यों हटाए गए SP वैद्य।
जो रिश्तेदार है उन्हें फौरी तौर रिहा किया गया और ये कहा जाता है कि शिष्टाचार जो हुई है वो DGP के हक में नहीं गई थी।
लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
BBC समाचार, कमलेश मठेनी से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी टीम में पूर्व सलाहकार रहे जॉर्ज पापाडोपुलस को 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के मामले में 14 दिन जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर रूस के कथित मध्यस्थों से मिलने के समय को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI से झूठ बोलने का आरोप है। ये मामला रूस द्वारा अमरीकी चुनावों को प्रभावित करने के कथित आरोपों से जुड़ा है। जॉर्ज पापाडोपुलस ने कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया और कहा कि वो देशभक्त अमरीकी हैं जिसने झूठ बोलकर गलती कर दी। जॉर्ज डोनाल्ड ट्रंप के पहले पूर्व सहयोगी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। उनको पहले ही 200 घंटे की समाज सेवा और $9,500 के जुर्माने की सजा दी जा चुकी है। अमरीका के दक्षिण में स्थित शहर इराक के दक्षिण में स्थित शहर बसरा में प्रदर्शनकारियों ने ईरानी दूतावास में आग लगा दी। इसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बसरा में भ्रष्टाचार और मूलभूत सेवाओं के अभाव को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। शिया बहुल इस इलाके में प्रदर्शनकारियों ने इराकी राजनीति में ईरान के दखल के खिलाफ भी नारे लगाए। इराक में हाल में हुए चुनावों के बाद सरकार बनाने को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं देश के प्रतिष्ठित शिया धर्मधार्मिक नेता अयातुल्ला अली अल सिस्तानी ने इन हालातों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और वर्तमान सरकार से बिल्कुल अलग नई सरकार बनाने की मांग की। अयातुल्ला अली के प्रवक्ता शेख अब्दुल महदी अल करबलाई ने कहा,
इन्नमा युआनी मिन्हुल मुआतिनून फिल बसरा वफी मुहाफजातिन उखरा।
बसरा और अन्य प्रांतों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव, बड़े स्तर पर गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कारण लोग बुरी हालत में हैं। इसके पीछे संवेदनशील जगहों पर बैठे बड़े अधिकारी जिम्मेदार हैं जो राजनीतिक जोड़तोड़ और परिवारवाद के कारण यहां तक पहुंचे हैं। ये हकीकत तब तक नहीं बदल सकती जब तक नई सरकारें पहले के मानदंडों पर चुनी जाती रहेंगी। शिया धार्मिक नेता अयातुल्ला अली के प्रवक्ता शेख अब्दुल महदी अल करबलाई के शब्द। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें सीरियाई शहर इदलिब में हमले की बजाय युद्ध विराम की बात कही गई थी। इदलिब शहर विद्रोहियों के कब्जे में है और सीरिया और सहयोगी रूस इदलिब पर एक बड़े हमले की तैयारी में जुटे हैं। सीरियाई सरकार अपनी सीमा पर सेना भी बढ़ा रही है। वहीं इदलिब में रह रहे लोगों पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। लोग इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इदलिब में एक विरोध प्रदर्शनकारी ने कहा, हम दाना शहर में जा रहे हैं। हमारी मांग है कि सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टाफन दे मिस्टूरा और उनके सहकर्मी सीरिया के लोगों की हत्या को रोकें। इन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के जरिए हम रूस और ईरान के हवाई हमलों से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये थे इदलिब में एक प्रदर्शनकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। जाने माने अमरीकी रैपर मैक मिलर लॉस एंजलिस के पास अपने घर में मृत पाए गए हैं। 26 वर्षीय मैक की मौत ड्रग्स की ओवरडोज के कारण बताई जा रही है। वह ड्रग्स की खतरनाक मात्रा लेने की बात पहले भी स्वीकार चुके हैं। हाल ही में उनकी एक एल्बम रिलीज हुई थी और इसके लिए वो यात्रा पर थे। मैक मिलर ने साल 2011 में आई अपनी एल्बम के बाद काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जबानी जंग दिखाई दी। बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पर ताकत का गलत इस्तेमाल करने, अमेरिका को विभाजित करने और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा को अमेरिका में हो रही अविश्वसनीय चीज़ों का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक नए आयाम की शुरुआत को लेकर कल एक बड़ी खबर आई। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान सरकार जल्द ही भारतीय सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर गुरुद्वारा साहिब के लिए कॉरिडोर खोलने जा रही है। इस पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने खुशी जताई, लेकिन भाजपा ने इस पर सिद्धू को ही कटघरे में खड़ा किया और पाकिस्तान की योजना पर शंका जाहिर की। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख के हालिया बयान का हवाला देते हुए सिद्धू से माफी मांगने की भी बात की। सुनिए बीबीसी संवाददाता कमलेश मठेनी की रिपोर्ट।
बातचीत करके ये फैसला किया है और इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आने वाला है कि वो बाबा नानक के 550वें जन्मदिन के ऊपर करतारपुर साहब का लांघा खोलने के लिए तैयार हैं। हर पंजाबी के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई हो ही नहीं सकती। मेरे एक एक रोम के अगर करोड़ करोड़ जबान लगे तो भी मैं अपने दोस्त पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब का धन्यवाद नहीं कर पाऊंगा।
ये थे कांग्रेस नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि पाकिस्तान आधिकारिक रूप से जल्द ही भारत के सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब के लिए कॉरिडोर खोलने जा रहा है। सिद्धू ने कहा कि जो लोग राजनीति करते हैं वो इस काम को असंभव बताते थे और यह अब हकीकत बनने जा रहा है। हाल ही में सिद्धू पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे और वहां सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से गले मिलने पर भारत में कई राजनीतिक दलों ने उनकी आलोचना की थी। पाकिस्तान द्वारा कॉरिडोर खोले जाने पर बीजेपी ने इसका स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने सिद्धू की एक बार फिर आलोचना की है। बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि सिद्धू प्राइवेट डिप्लोमेसी चला रहे हैं।
जहाँ तक करतार सिंह गुरुद्वारे का जो रास्ता खोला है उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि यह धार्मिक आधार पे उन्होंने जेस्चर दिया है। और जहाँ तक सिद्धू साहब का है वो, और जब कल पाकिस्तान आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट आया जो भारत के लिए काफी निराशाजनक और था, तो उसके बाद भी उस सबको जस्टिफाई करते हुए जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं इससे वह कहीं भी अच्छी बात नहीं है और उसका भाजपा विरोध करती है कि इस तरह से देश के साथ बिना सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए वो प्राइवेट डिप्लोमेसी अगर एक ऐसे दुश्मन देश के साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति पे सवाल खड़ा होता है।
गुरुवार को पाकिस्तान के रक्षा और शहीदी दिवस के मौके पर सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि सीमा पर बहे खून का बदला लिया जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की आदत नहीं जाएगी और उन्होंने सिद्धू के जरिए भारत की आंतरिक राजनीति को उलझन में डाले जाने को लेकर भी शक जताया। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा,
एक कॉरिडोर खुल गया यह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशन में कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से वो पीठ में छुरा घोंपता आ रहा है और इस तरह के बयान देते हैं तो इससे पता चलता है कि वह इस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं। वह कहीं ना कहीं जो है भारत के अंदर एक कंफ्यूजन और क्रिएट करना चाह रहे हैं या डिवीजन करना चाह रहे हैं।
करतारपुर गुरुद्वारा साहिब के लिए कॉरिडोर खोले जाने पर अभी तक भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और इस मसले पर बीबीसी ने कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस पर कुछ कहने से इनकार कर दिया है। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब भारतीय सीमा से पाकिस्तान में करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। करतारपुर साहिब एक ऐसा स्थान है जहाँ गुरु नानक देव ने 17 साल से अधिक समय बिताया था। कमलेश मठेनी, बीबीसी दिल्ली।
आज से नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। ये बैठक अपने तय समय से कुछ देरी से हो रही है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के देहांत के बाद इस बैठक को स्थगित कर दिया गया था। मौजूदा राजनीतिक हालात में और खासतौर से कुछ महीनों में होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा के लिए बैठक क्यों खासी महत्वपूर्ण समझी जा रही है, कुलदीप मिश्र की रिपोर्ट।
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू होकर 2 दिन तक चलेगी। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं कि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के लिए आर्थिक और राजनीतिक हालात कुछ प्रतिकूल हुए हैं।
इकोनॉमिक फ्रंट को लेके अगर आप देखिए
रूपी का स्लाइड करना उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, प्राइसेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा जो अभी हम फील करना शुरू कर रहे हैं। और आपको याद होगा प्राइसेस और करप्शन को लेके ही यूपीए ने मार खाई थी 2014 में, जो मेन मुद्दा सामने आए थे।
सामाजिक समीकरण के मोर्चे पर भी भाजपा को अप्रिय संकेत मिल रहे हैं। SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर उसने दलितों को साधने की कोशिश की, लेकिन अगड़ी जातियां इससे नाराज दिख रही हैं। नीरजा चौधरी मानती हैं कि दो दिन पहले हुए अगड़ी जातियों के भारत बंद ने इस बैठक की अहमियत और बढ़ा दी है।
ये भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है भाजपा के लिए, क्योंकि जो लोग भाजपा की सपोर्ट करते आए हैं दशकों से, अब वो अगर बिदक गए तो उसका फायदा कांग्रेस को जा सकता है। तो अमित शाह और मोदी की जोड़ी कैसे इस चीज से जूझेगी, भाजपा के लोग इस किस तरह से इसको अब टैकल करेंगे, क्योंकि चुनाव तो बहुत नजदीक आ रहे हैं।
हालांकि भाजपा प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल कहते हैं कि ये बैठक सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर नहीं बुलाई गई है, लेकिन इन पर चर्चा जरूर होगी।
हर 3 महीने में एक मीटिंग होती है, वो होती है, और उसपे बेसिकली जो फीडबैक होता है कि जो पिछले 3 महीने में क्या काम हुए, आने वाले समय में हमारे जो पूरी सरकार के इनिशिएटिव आने वाले हैं, जैसे आयुष्मान है, इन सब पे चर्चा होती है। ये नहीं है कि ये पेट्रोल प्राइजेस और SC ST एक्ट पे कोई इसी के फोकस करके मीटिंग है, हाँ, लेकिन इन पे भी चर्चा तो होगी।
बैठक में सरकार की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा किए जाने के भी आसार हैं। इसमें कुछ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के फैसले, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और OBC राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के कदम पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन बैठक से पहले जो सवाल ज्यादा चर्चा में है वो ये कि क्या भाजपा के लिए वाकई ये चुनौतीपूर्ण समय है। गोपाल अग्रवाल कहते हैं,
पॉलिटिकल सिनेरियो कंटिन्यूअसली फ्लूइड होते हैं, लिक्विड होते हैं, चेंज होते रहते हैं, और हम तो हर वक्त ही पूरी तरह से मान के चलते हैं कि जो परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है उनके लिए हर समय चैलेंजिंग है, जिसको कुछ काम नहीं करना उसके लिए कोई चैलेंज नहीं है।
भाजपा ने इस बैठक के लिए नई दिल्ली के BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का चुनाव किया है। इस जगह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल भीमराव आम्बेडकर की विरासत के सम्मान में किया था। अब यहीं पर होने वाली भाजपा की बैठक में सवर्णों की नाराजगी संभवतः सबसे ज्वलंत विषय होगा। कुलदीप मिश्र, BBC दिल्ली।
आज से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पेट्रोल डीजल की कीमतों में शुक्रवार को भी बढ़ोतरी जारी रही। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 48 पैसे महंगा होकर 79.99 रुपये प्रति लीटर हो गया, तो डीजल 52 पैसे की तेजी के साथ 72.02 रुपये लीटर तक पहुंच गया। मुंबई में पेट्रोल 87 रुपये से अधिक कीमत पर बिका। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ महंगाई बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है। BBC संवाददाता कुलदीप मिश्र ने वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष सिन्हा से संपर्क किया और उनसे पूछा कि क्या इसके पीछे सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कारण है।
अंतर्राष्ट्रीय कारण तो बिल्कुल है, लेकिन कुछ कुछ हमारी भी करनी है। देखिए, कमजोर इकोनॉमी मोटे तौर पर इक्वल टू कमजोर करेंसी। अगर जब आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी तो आपका करेंसी भी मजबूत होगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ राइडर है। ऐसा भी हो सकता है कि डॉलर मजबूत हो जिसके कारण रुपया उसके मुकाबले कमजोर हो। तो फिलहाल डॉलर मजबूत हो रहा है जिसके कारण ये परेशानी रुपये को झेलनी पड़ रही है।
जैसी स्थितियां बन रही हैं, रुपया कमजोर हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, आपको लगता है कि सरकार को अब पेट्रोल डीजल के दामों में फौरी राहत देने के लिए उत्पाद शुल्क घटाने पर विचार करना चाहिए?
देखिए, वो एक बड़ा मसला है, उसमें चैलेंज ये है कि देखिए, जब रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले तो आपको ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं कच्चा तेल खरीदने के लिए। भारत में 80% कच्चा तेल खरीदा जाता है, आयात किया जाता है, वो डॉलर के मजबूत और रुपए के कमजोर होने से उसके लिए ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है, तो रुपए में आपकी लागत बढ़ गई है, और ये कमजोरी है जिसका की भुगतान आपको और मुझे, हम जैसे कंज्यूमर्स को करना पड़ रहा है।
जैसे कारणों पर अगर बात करते हुए कहें, उनको मद्देनजर रखते हुए कहें, तो ये स्थिति कब तक रह सकती है?
मुद्रा बाजार करवट का बदलेगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो परेशानी है वो तो है। मेरा ये मानना है, अगर एनालिसिस के रूप में देखें, कि सरकार जो कच्चे तेल की कीमत या पेट्रोल डीजल की जो कीमत ले रही है आज, और मुंबई में जैसे करीब 86 रुपए में करीब माना जा रहा है, करीब 47-48 रुपए टैक्स है, तो ये जो टैक्स ले रही है सरकार, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड थोड़ा है, क्योंकि हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़ा पैकेज किसानों के लिए और कुछ और वर्गों के लिए आ सकता है, जो कि इलेक्शन के आसपास आएगा।
पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष सिन्हा।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
गुरुवार को अचानक जम्मू कश्मीर में डॉक्टर एसपी वैद को पुलिस प्रमुख के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह पर अस्थायी तौर पर एक नए प्रमुख को लाया गया है। यह अभी तक साफ नहीं हुआ है कि डीजीपी वैद को क्यों अचानक हटा दिया गया। विश्लेषक इस बदलाव को लेकर क्या कहते हैं, सुनिए माजिद जहांगीर की इस रिपोर्ट में।
करीब 2 साल तक जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी रहे डॉक्टर शेषपाल वैद का बीती गुरुवार देर रात तबादला किया गया और उनकी जगह पर डीजी प्रिजन्स दिलबाग सिंह को लाया गया है। दिलबाग सिंह ने शुक्रवार को श्रीनगर के पुलिस हेडक्वार्टर्स में डीजीपी का ओहदा संभाला। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि एसपी वैद को अचानक डीजी के ओहदे से क्यों हटाया गया। तहम इस तबादले के इर्द गिर्द कई सारी बातें सामने आ रही हैं। विश्लेषक और पत्रकार अहमद अली फयाज कहते हैं,
अब इसमें बहुत सारी चीजें वो यहाँ चल रही हैं कि ये तबादला क्यों अमल में लाया गया। कई लोग ये बता रहे हैं कि जो अस्करत पसंदों से मतलब पॉलिसी थी उसमें काफी बुनियादी तब्दीलियां लाई जा रही हैं, लेकिन अभी इस बारे में ये सारी कयास आ रहे हैं और चुने हुए हैं, इसमें कोई मटीरियल एविडेंस सामने नहीं आई है।
वर्ष 1984 के आईपीएस अधिकारी दिलबाग सिंह पहले भी राज्य में इंटेलिजेंस चीफ के पद पर रहने के अलावा कई दूसरे अहम पदों पर रह चुके हैं। एसपी वैद के तबादले की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि हालिया दिनों में दक्षिणी कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू के पिता और अन्य चरमपंथियों के रिश्तेदारों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद हिजब ने करीब 11 पुलिस कर्मियों के रिश्तेदारों और पुलिस कर्मियों का अगवा किया था। पुलिस कर्मियों के अगवा के बाद पुलिस ने रियाज नायकू के पिता को हिरासत से रिहा कर दिया था और जिसके बाद चरमपंथियों द्वारा सभी अगवा किए गए 11 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया था। वरिष्ठ पत्रकार खुर्शीद वानी,
पुलिस के जवाब में आला सतही पर यह फैसला लिया गया था कि मिलिटेंट्स के जो रिश्तेदार हैं और आरजी तौर जिन्हें बंद किया गया है पुलिस थानों में, उन्हें फौरी तौर रिहा किया गया। और ये कहा जाता है कि इस फैसले पर और ऐसी सूरत हाल जो हुई है वो डीजीपी के हक में नहीं गई थी।
विश्लेषक ये भी कहते हैं कि राज्य में बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार टूटने के बाद से ही प्रशासन और पुलिस में नए चेहरों को सामने लाया जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि एसपी वैद ने कई मुद्दों पर राज्यपाल हाउस और गृह विभाग में अपना प्रदर्शन दर्ज किया था। बीते 2 वर्षों में एसपी वैद चरमपंथ खिलाफ अभियानों में काफी सक्रिय रहे हैं। बीते 3 महीनों से जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू है। 19 जून को राज्य में पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार टूट चुकी है। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
अब जान लेते हैं कि आज के अखबारों में क्या कुछ खास है। अखबारों के साथ स्टूडियो में पहुंच चुकी हैं कमलेश मठेनी जी। कमलेश बताएं क्या कुछ है।
हाँ शाहिद, आज हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस है जिसमें हम देख सकते हैं कि राफेल विमान से जुड़ी पहली खबर है। ये विमान जो है काफ़ी विवादित रहा है। इस खबर के मुताबिक साल 2022 तक, यानी राफेल विमान से जुड़ा समझौता है जब उसकी अवधि तक खत्म होने तक, भारत के पास सिर्फ एक ऐसा विमान आएगा जो भारत की ज़रूरतों के अनुसार हो। बाकी के विमान सितंबर 2019 से आने शुरू होंगे, लेकिन उनमें भारत में ही बदलाव करना होगा। इसके अलावा एक खबर है जो अभी कई एक्टिविस्ट भीमा कोरेगांव मामले में पकड़े गए थे नक्सलवादी संबंधों को लेकर। इसमें पुलिस ने 7 ऐसे संगठनों का नाम बताया है जो इससे जुड़े हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो कि प्रतिबंधित है, बाकी सभी प्रतिबंधित नहीं है, जिसे तेलंगाना सरकार ने, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ओडिशा सरकार ने प्रतिबंधित किया है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर है जो दुखी भी कर सकती है, जिसमें हरीश कुमार जो एथलीट है वो दिल्ली के मजनू के टीला में चाय बेचकर अपना घर चलाते हैं। उनके पिता जो हैं वो किराए पर ऑटो रिक्शा चलाते हैं। हरीश जो है सेपक टकरा खेल है उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किया था अभी एशियन गेम्स में, लेकिन अभी वो इन बुरे आर्थिक हालातों से गुजर रहे हैं। उनकी माता जी हैं, वो घरों में काम करके अपना
और इस पे सरकार ने, दिल्ली सरकार ने कुछ मदद का आश्वासन भी दिया है क्या इस पर?
ऐसी कोई खबर तो नहीं है कि कोई आश्वासन मिला है।
इसके अलावा मैं देख सकता हूं कमलेश जनसत्ता में एक खबर लगी है कि दिल्ली में 2 चरमपंथियों को गिरफ्तार किया गया, हथियार और कारतूस जब्त। इससे जुड़ी और भी खबरें हैं। जनसत्ता पे ही एक मेन में खबर देख पा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि भीड़ की हिंसा पर कोर्ट के आदेशों का पालन करें। मतलब जिस तरीके से भीड़ में भीड़ द्वारा पीटने की घटनाएं आ रही हैं, तो अभी भीड़ की मैं बात कर रहा हूं और कोर्ट के आदेशों की पालन की बात कर रहा हूं। उसी के बगल में जनसत्ता पे खबर लगी हुई है कि बेगूसराय में गुस्साई भीड़ ने तीन लोगों को पीट कर मार डाला
जी।
तो ये खबर थी कि स्कूल से कथित तौर पर लड़की को अगवा करने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। तो ये भीड़ को मारने की जो एक प्रवृत्ति बहुत देखने को मिल रही है, इस पर कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा कुछ और देख पा रही हैं आप?
हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स देख सकते हैं। इसमें अभी हाल ही में जैसे समलैंगिक संबंधों को लेकर कोर्ट का फैसला आया है, तो हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि इसमें समलैंगिक शादियों को लेकर भी आगे अपील हो सकती है, लेकिन शायद सरकार इसका विरोध करेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश अखबारों की समीक्षा के लिए।
बीबीसी इंडिया बोल।
एक तरफ दलितों की नाराजगी तो दूसरी तरफ अगड़ों की ललकार। तेल के बढ़ते दाम और रुपए की घटती साख। 2019 के आम चुनावों के पहले चुनौतियों के चक्रव्यूह से बीजेपी को निकाल पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इस बार बीबीसी इंडिया बोल में इसी सवाल की पड़ताल। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 8 सितंबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या फिर 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारतीय समाज में स्त्री पुरुष संबंधों और सेक्स के बारे में खुलकर बात करने से अक्सर बचा जाता है। हाल ही में लंदन में रहने वाली सीमा आनंद की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें उन्होंने रिझाने की कला पर बहुत बेबाकी और गंभीरता से बात की है। आज की विवेचना में रेहान फजल चर्चा कर रहे हैं इस पुस्तक में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर।
मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को बेला महका बेला महकारी महका आधी रात को हो मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को बेला महकारी महका आधी रात को।
ये एक विडंबना है कि भारत जैसे देश में जहाँ कामसूत्र की अवधारणा रची गई और प्रेम की भाषा को खजुराहो दिलवाड़ा अजंता और एलोरा के पत्थरों पर उकेरा गया, उसी देश में लोग प्रेम संवाद और रिझाने की कला भूलते जा रहे हैं। एक अंग्रेज लेखक हुए हैं साइमन रेवन, जिनका मानना था कि सेक्स एक ओवररेटेड अनुभूति है जो मात्र 10 सेकेंड के लिए रहती है। वो सवाल करते थे कि कोई क्यों प्राचीन भारत के इरोटिक साहित्य का अनुवाद करने की जहमत उठाए। मैंने यही सवाल रखा चर्चित पुस्तक द आर्ट्स ऑफ सिडक्शन की लेखिका डॉक्टर सीमा आनंद के सामने और पूछा कि क्या वो साइमन रेवन के इस वक्तव्य से सहमत हैं?
नॉट एट ऑल। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोच है इस पर वो ऐसे बदल गई है दैट इज हाउ वी लुक एट थिंग्स। आई थिंक कि कितनी सेंचुरीज से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं, हमें सिखाया जाता है दैट इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ यूजलेस थिंग, इट्स अ सिनफुल थिंग। प्लेजर के बारे कोई बात ही नहीं करता। नोबडी सेज के इसमें इतना आनंद आ सकता है। 325 एडी के आसपास ही कहते हैं कि वात्स्यायन गैंजीज के किनारे गंगा के किनारे बैठ कर अपने कामसूत्रा लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि प्लेजर इज़ वेरी गुड और किस तरह प्लेजर को बढ़ाया जा सकता है। एंड आई फाइंड इट इनक्रेडिबल। साइमन रेवन ने कहा है कि यू नो इट्स अ पॉइंटलेस थिंग विच लास्ट 10 seconds। एंड एलेक्स कम्फर्ट व्हेन ही रोट हिज बुक ही सेड कि बिकॉज इस तरह से लोगों की सोच है इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग बैक द आइडिया ऑफ प्लेजर।
कहा जाता है कि एक प्रेमी के रूप में मर्द और औरत में बहुत फर्क होता है और उनकी यौनिकता यानी सेक्सुअलिटी के स्रोत में जमीन आसमान का अंतर होता है।
वात्स्यायन सेज वुमेन एंड मेन आर कंप्लीटली डिफरेंट। मेन आर लाइक फायर, आग की तरह वो बहुत आसानी से भड़क उठते हैं और बहुत आसानी से बुझ भी जाते हैं। एंड इट स्टार्ट्स एट द जेनिटल्स, उनकी डिजायर स्टार्ट्स डाउन देयर एंड इट गोज अपवर्ड्स। औरत पानी की तरह है, हर डिजायर बिगिंस इधर ब्रेन में एंड इट फ्लोज डाउनवर्ड्स। पानी की तरह इट टेक्स वेरी लॉन्ग उसको उसकी डिजायर को उभरने में और पानी की तरह बहुत देर लगती है उसको बैठने में भी।
सेक्स पर काफी शोध कर चुके भारत के नामी सेक्सोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर प्रकाश कोठारी स्त्री पुरुष के प्रेम के अंतर को एक दूसरे ढंग से समझाते हैं।
मर्द प्यार देता है सेक्स पाने के लिए और औरत सेक्स देती है प्यार पाने के लिए। ये सॉलिड ट्रुथ आपको हिंदुस्तान में जरूर मिलेगा।
सीमा आनंद एक दिलचस्प बात बताती हैं कि स्त्री पुरुष संबंधों को ताजा और रोमांचक बनाए रखने के लिए उनके बीच कभी कभार लड़ाई होना जरूरी है।
कामसूत्र में वात्स्यायन ने कहा है कि लड़ाई बहुत जरूरी है टू कीप इट फ्रेश, एंड ही ऑल्सो सेज कि मर्द का काम है टू मेक अप, औरत का काम है टू हैव द टैंट्रम, टू गेट एंग्री। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ तब होनी चाहिए इफ देयर इज अ लॉट ऑफ लव बिटवीन द मैन एंड द वुमन। अगर इतना सिक्योर रिलेशनशिप नहीं है तो फिर ये टूट भी सकता है लड़ाई करने से। बट एक चीज है सिर्फ, औरत लड़ाई कर सकती है एंड शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स, पर घर के बाहर नहीं जा सकती। बुक में लिखा है कि द मैन विल मेक अप द फाइट फाइनली, अपना सिर उसके पैरों पर रख के, बट ये उसको बाहर करना परमिटेड नहीं था, घर के बाहर। ये सिर्फ घर के अंदर हो सकता था, उसके पैरों पर गिर।
रूठ गए मैं मना पी रही सैया, रूठ गए मैं मना पी रही जी सैया, रूठ गए।
कामसूत्र की बात मानी जाए तो प्रणय निवेदन करने की एक गुप्त भाषा होती है, और इजहारे इश्क सिर्फ जुबान से ही नहीं किया जाता।
अगर आपको सीक्रेट लैंग्वेज नहीं मालूम तो आप कभी ये जान नहीं पाएंगे कि आपकी प्रेमिका आपसे क्या कहना चाह रही है, और आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये लैंग्वेज इतनी ज़्यादा हाईली डेवलप्ड थी कि आप किसी भी बात पर गुफ्तगू कर पाएं एक दूसरे के साथ, और कोई वर्ड्स उसमें इस्तेमाल ना हो। अगर आप पब्लिक में हैं, जैसे किसी मेले में हैं, और आपको अपनी प्रेमिका मेले के उस तरफ खड़ी दिख गई, पहले अगर कान के ऊपरले हिस्से पर हाथ लगाओ तो उसका मतलब आप कैसे हो। फिर प्रेमिका होपफुली आपको देख के खुश हुई होंगी, तो वो कान के नीचे द ईयर लोब, कान के नीचे का हिस्सा पकड़ के आपकी तरफ देखें, इसका मतलब कि आपको देखकर अब बहुत खुश हो गई। फिर प्रेमी अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रख के, और फिर एक हाथ सिर पर रख के, इसका मतलब कि तुम्हारे बारे सोच सोच के अब मेरा दिमाग खराब हो गया। एंड इट गोज ऑन कि किस तरह से वो आगे क्या कहेंगे, क्या किस तरह से कॉन्वर्सेशन बढ़ेगी।
मजा क्या रहा जब के खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से।
निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने कहां से।
सीमा आनंद ने अपनी पुस्तक का एक पूरा अध्याय चुंबन की कला को समर्पित किया है। वो कहती हैं कि एक चुंबन की क्रिया में चेहरे की 34 और पूरे शरीर की 112 मांसपेशियां भाग लेती हैं।
आई हैव नोटिस्ड कि नॉर्मल जो किसिंग होती है, जो हमने रिसर्च किया है, 2 या 3 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लास्ट करती है। 2 सेकंड के बाद लोग सोचते हैं कि अच्छा ये तो बहुत हो गया, यू नो 10 सेकंड काफी लंबा टाइम होता है। इट रजिस्टर्स बिकॉज इट मेक्स एन इम्पैक्ट।
स्त्री पुरुष शारीरिक संबंधों में पैर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इस पर बहुत कम लोगों की नजर गई है। सीमा आनंद का मानना है कि रिझाने की कला में पैर कुछ खास होते हैं, और महिलाओं को अपने चेहरे से ज्यादा अपने पैरों की देखरेख पर ध्यान देना चाहिए।
सारी जो हमारी नर्व एंडिंग्स हैं वो जाके पैर में खत्म होती हैं। दैट मींस दैट इट इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट एनीवे। आजकल आई फाइंड कि हम लोग अपने पैर को जकड़ लेते हैं इतने हाई हील्स वगैरह में। मैं हमेशा कहती हूँ सबसे कि आपको सीरियसली अगर अपने पैर के साथ किसी को सेड्यूस करना है, बैठिए, अपना सैंडल उतार दीजिएगा और अपना पैर थोड़ा सा फ्लेक्स कीजिए, थोड़ा दिखाइए, थोड़ा इधर उधर मोड़िए पैर को। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द बॉडी। लर्न टू कीप योर फीट मोर ब्यूटिफुल बिकॉज इट्स द सेक्सीएस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी।
इनायत होगी वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
विवेचना आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखें। कल भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट खोकर 198 रन बना लिए। और अब चलते चलते मुख्य समाचार कमलेश मठेनी से।
अब अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी टीम में पूर्व सलाहकार जॉर्ज पापाडोपुलोस को 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के मामले में 14 दिन जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI से झूठ बोलने का आरोप है। इराक के दक्षिण में स्थित शहर बसरा में प्रदर्शनकारियों ने ईरानी दूतावास में आग लगा दी। इसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें सीरियाई शहर इदलिब में हमले की बजाय युद्ध विराम की बात कही गई थी। जाने माने अमरीकी रैपर मैक मिलर लॉस एंजलिस के पास अपने घर में मृत पाए गए हैं। BBC समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। आपसे अगली मुलाकात BBC इंडिया बोल में शाम 7:30 बजे होगी। मोहम्मद शाहिद को दे अनुमति। नमस्कार।